તારીખ 5/1/1997 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 833 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું બાંધણીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર
36 પત્ર 833 સર્વદ્રવ્ય છે, સર્વક્ષેત્ર છે, સર્વકાલ છે ઓર સર્વભાવ છે. જો સર્વથા અપ્રતિબદ્ધ હોકર નિજ સ્વરૂપ મેં સ્થિત હુએ ઉન પરમ પુરુષો કો નમસ્કાર. સ્વરૂપ સ્થિરતા મેં સ્થિત હોને સે પવિત્રતા પ્રગટ હોતી હૈ. અન્ય દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવ મેં પ્રતિબદ્ધ હોને સે મલિનતા ઉત્પન્ન હોતી હૈ. દો કા કારણ હુઈ હૈ ઓર જીવ અનાદિ સે પર દ્રવ્ય ક્ષેત્ર ક્ષેત્ર કાલ ભાવ કે પ્રતિ આસક્ત રહા ઓર પર દ્રવ્ય સે ઉનકી પ્રતિબદ્ધતા રહી હૈ. ઇસસે દુખી ભી હૈ, મલિનતા હોતી હૈ વહાં દુખ ભી હોતા હી હૈ. અન્ય કાળ એટલે અન્ય પદાર્થની પર્યાય, અન્ય દ્રવ્ય, અન્ય દ્રવ્યનું ક્ષેત્ર, અન્ય દ્રવ્યના ગુણ અને અન્ય દ્રવ્યની પર્યાય. કાળ એટલે પર્યાય એમ કહેવાય. જો નિજ સ્વરૂપ મેં સ્થિત હુએ, સ્વરૂપ મેં સ્થિત હોના એક સેકન્ડ કે લીએ ભી સ્વરૂપ મેં સ્થિત હોના એ તીન લોક કો જીતને કે બરાબર હૈ. મામૂલી બાત નહીં હૈ. તો યહાં તો સર્વથા અપ્રતિબદ્ધ હોકર સર્વથા સ્થિત હો ગયે. જો પરમ પુરુષ પરમાત્મા હૈ वो सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रतिबद्धता को से मुक्त होकर के निज स्वरूप में सर्वथा स्थिर हो गए. ऐसे जितने भी हुए उस सभी परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ. क्यों नमस्कार करता हूँ कि मुझे भी ऐसा ही होना उसमें ये अभिलाषा है, ये भावना है कि मेरी भी ऐसी दशा हो जाए. जिन्हें कुछ प्रिय नहीं, जिन्हें कुछ अप्रिय नहीं, किसी भी पदार्थ के प्रति राग नहीं, किसी भी पदार्थ के प्रति द्वेष नहीं, जिनका कोई शत्रु नहीं, जिनका कोई मित्र नहीं है, वो अपने ओर से हैं. कोई राग करे और कोई द्वेष करे ये हो सकता है, लेकिन जो वितराग है उनको राग करने वाला मित्र नहीं लगता, द्वेष करने वाला शत्रु नहीं लगता. ऐसी बात है, अपनी ओर से बात है. ये सामने वाले के परिणाम स्वतंत्र है, इसके हम मालिक नहीं है, धनी नहीं है. कोई राग भी करेगा, कोई द्वेष भी करेगा. चाहे तीर्थंकर हो तो भी उसका भी द्वेष करने वाले होते हैं, उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति वाले को. तो सामान्य पुण्य वाले का तो द्वेष करने वाले तो होंगे ही होंगे, लेकिन जिनको कोई शत्रु नहीं, जिनको कोई मित्र नहीं, राग करने वाले के प्रति राग करना और द्वेष करने वाले के प्रति द्वेष करना, ये तो सभी संसारी प्राणी करते ही हैं, ऐसा ही करते हैं। इससे ऊपर उठ के राग करने वाले के प्रति राग भी नहीं करना, द्वेष करने वाले के प्रति द्वेष भी नहीं करना। वो कब हो सकता है कि वीतराग भाव से ज्ञाता दृष्टा रहे, तब जिनका कोई शत्रु नहीं, जिनको कोई मित्र नहीं, जिन्हें मान अपमान दोनों का अभाव किया है, जिसको मान और अपमान मनुष्य पर्याय में ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मान अपमान की बात छोटे से लेकर बड़ों को सबको मान अपमान की बात चुभती है। मेरा मान रहना चाहिए, मेरा अपमान होना नहीं चाहिए। अरे अपमान नहीं करे, सीधा कोई अपमान नहीं करे, लेकिन मुख्यता नहीं दे, मान नहीं दे, तो लगता है जीव को कि मुझे निग्लेक्ट कर रहे हैं। क्या ये बात हो जाती है, मुझे गौण कर रहे हैं, मुझे निग्लेक्ट कर रहे हैं, मैंने उपेक्षा मेरी हो रही है। मान की अपेक्षा है ना, तो मान की अपेक्षा है, वो मान नहीं मिलता है, भले ही अपमान नहीं करे, लेकिन मान नहीं मिलता है तो अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती, अपेक्षा का पोषण नहीं होता, तो अदरवाइज ले लेते हैं, मेरी उपेक्षा हो रही है, मेरी कोई उपेक्षा करे वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो वीतरागी है, ज्ञानी है, उनको मान अपमान का प्रश्न होता नहीं।
ये बात तो उनसे मुमुक्षु की भूमिका से शुरू
हो जानी चाहिए। मुमुक्षु की भूमिका से ये बात का प्रैक्टिस करना है कि मान अपमान जैसा प्रश्न मुझे कुछ होना ही नहीं चाहिए। इसलिए जो मुमुक्षु होता है वो दासानुदासपणे रहने का प्रयास करता है, जिससे मान चढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होगा।
ऐसी अरे मुमुक्षु शत्रु को अपने जितने भी कुकर्म किए हैं उसने, या जितने भी बुरे से बुरे दोष किए हैं, वो भी सामने नहीं रख पाता है,
मान का सेवन ठीक है। और सबको जिसको भी दोष मिटाना है उनको ये बात तो आती है कि मेरे को मान चढ़े तो कैसे मुझे मिटाना है, दासानुदास हो जाओ, बहुत आसान तरीका है। सेवक होकर के रहना है, क्या सेवक होकर के रहना है, कहीं भी हमें अधिकार जमाना नहीं है, बात खत्म। तो जिन्हें मान अपमान भी नहीं है, जिन्हें लाभ अलाभ नहीं, लाभ नुकसान का प्रश्न नहीं, क्यों कि आत्मा परिपूर्ण तत्व होने से, अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण तत्व होने से उसमें कोई आने की जगह नहीं, आने का अवकाश नहीं, आने की गुंजाइश नहीं है। जैसे एक कलश पानी से भरा है पूरा, इतना पूरा भरा है कि एक बूंद डालो तो एक बूंद नीचे गिरेगी, दो बूंद डालो तो दो बूंद नीचे गिर जाएगी, जगह नहीं है वहां। वैसे मैं मेरे स्वरूप से परिपूर्ण हूं, मुझे किस चीज का लाभ, और अलाभ मैंने नुकसान, मेरे स्वरूप में से कौन क्या चीज को ले जा सकता है, संभव नहीं। न मेरा एक गुण को कोई ले जा सकते हैं, न मेरे कोई प्रदेश को क्षेत्र में से कोई ले जा सकते हैं। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा स्वरूप अभेद किला जैसा है। कैसा? अभेद किला, कोई भेद 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 ही नहीं सके, तो नुकसान किस बात का मुझे? संयोग वियोग में लाभ नुकसान माना जाता है संसार में, लेकिन हम हमारी आत्मा को अनंत काल में अनंत प्रकार के संयोग मिले और सभी संयोग का वियोग भी हुआ। हमारा आत्मा में कौन सी बदाघटि हो गई? तो स्वरूप से ही अवधगट है, बढ़ता भी नहीं और घटता भी नहीं, अवधगट है, ऐसा ही स्वरूप है। इसलिए लाभ नुकसान का प्रश्न आत्मज्ञान होने से समाप्त हो जाता है। लाभ नुकसान का प्रश्न भी नहीं, मान अपमान का भी प्रश्न आत्मज्ञानी को नहीं है। तो फिर शत्रु मित्र कहां से रहा? कोई शत्रु नहीं। कोई शत्रु जैसा भाव कर सकता है, उसका ज्ञान होता है कि ये मेरे प्रति शत्रुता का भाव करता है, लेकिन वो भाव उस आत्मा की सीमा में है। मेरी सीमा में इसका प्रवेश है ही नहीं, फिर मुझे क्या लेना देना? जैसे विद्या पहले होती थी, इस विद्या से अपने अगल बगल में कवच बना ले लड़ाई में, फिर कोई भी शस्त्र फेंके तो बार ही बार खत्म हो जाए। ये कवच की सीमा में उसका प्रवेश नहीं, वो सुरक्षित हो गया कि नहीं हो गया? तो मेरी आत्मा तो स्वयं सुरक्षित है अनादि से, हाँ। मेरा स्वरूप की रक्षा कौन करते हैं? करता है अनंत शक्तियां मेरे स्वरूप की रक्षा करती हैं। जैसे कहते हैं ना संसार में, अन्य मति लोग ऐसे कहते हैं कि हजार हाथ वाला भगवान है, वो जिसकी रक्षा करते हैं उनको कौन मार सकता है? तो भगवान तो शायद हजार हाथ वाला हो या नहीं हो, मेरी आत्मा तो अनंत शक्ति वाला है ही। मेरा आत्मा तो अनंत शक्ति वाला है, वो सब शक्तियां मेरा रक्षण करती है। मेरे कोई शत्रु शत्रुता का भाव अपनी सीमा में कर ले, मेरे कोई शत्रु है ही नहीं। मेरे तो ज्ञान के ये है, मैं मात्र ज्ञान स्वरूपी हूँ और वो मेरे की है। जैसे राग करने वाला की है, ऐसे द्वेष करने वाला नहीं है, ऐसे दोनों नहीं करने वाला भी नहीं है। कोई राग करता है, कोई द्वेष करता है, कोई कुछ नहीं करता है, न राग करता है न द्वेष करता है। मेरे लिए तो सब एक ही वर्ग में है, ज्ञेय के खाते में जाते हैं, पर ज्ञेय में सब आगे। जिसको हर्ष शोक नहीं, अभाव हो गया, जिसको हर्ष शोक का, वो राजी भी नहीं होता कोई कारण से, नाराज भी नहीं होता, क्योंकि सब नहीं है। राजी होने का क्या कारण है? मुझे कुछ मिले तो मैं राजी हूं ना, मिलता नहीं, मेरे में से कोई जाता नहीं। और जन्म मृत्यु, न मेरा जन्म है न मेरा मृत्यु भी, मैं शाश्वत हूं, नया उत्पन्न होने का सवाल नहीं, मेरा नाश होने का भी सवाल नहीं। अनंत गुणों की संपत्ति से मैं हमेशा हमेशा संपन्न ही रहता हूँ, इसलिए मुझे जन्म मरण का भी कोई बात लागू पड़ता नहीं है। ये वास्तविकता है। क्या, क्यों कि अब मैं मौजूद हूँ कि नहीं हूँ, अपनी मौजूदगी का अनुभव सब लोग करते हैं कि नहीं करते, क्या करते हैं कि मैं तो मौजूद हूँ। इसका मतलब कि भूतकाल में मैं कभी मरा नहीं, गत भव में भी मरा नहीं, और आगे अनंत भव हुए उसमें मैं मरा नहीं। अनेक प्रकार के शरीर के संयोग हुए, अनेक प्रकार के शरीर के वियोग हुए, मैं तो यूं का यूं खड़ा हूं, मेरा मृत्यु हुआ नहीं और होने वाला भी नहीं। शास्त्र में एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है कि एक आदमी हाथ में दिया को लेकर पकड़ करके अपने बड़े मकान के एक कमरे में से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे में से तीसरे कमरे में, तीसरे कमरे में से चौथे कमरे में चलता है। जब वो चलता है तो जिस जिस कमरे में वो जाता है वहाँ प्रकाश होता है, फिर उस कमरा छोड़ता है तो वहाँ अंधेरा हो जाता है, फिर दूसरे कमरे में जाता है। और जिस कमरे में प्रवेश किया और जिस कमरे को छोड़ दिया, दिया को क्या फर्क पड़ता है बताइए? दिया को क्या फर्क हो गया? ऐसे जिस जिस देह में ये ज्ञान ज्योति का प्रवेश हुआ, उस वक्त वो देह जीवंत लगता था, वो देह को छोड़ दिया तो मुर्दा लगने लगा। लेकिन ज्ञान ज्योति तो वैसी की वैसी है, ज्ञान ज्योति को कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए जीवन और मृत्यु जिसको समान है, क्या है? गोपाल देव ने तो इससे भी आगे बात लिया है अपूर्व अवसर में, जीवन और मृत्यु तो समान है लेकिन भव और मोक्ष भी समान है। क्योंकि जब जीवन मृत्यु तो भव वाले को होता है, तो मुझे भव है तो फिर मुक्त होने का भी मुझे कोई कारण रहता नहीं। जा भव मोक्ष पण शुद्ध वरते समभाव जो शत्रु शत्रु मित्र प्रत्ये वर्ते समदर्शिता मान अमाने पण तेज स्वभाव जो जीवित के मरणे नहीं न्यूना धिकता भव मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव। ये काव्य में लिखा है, पद्य में लिखा है, ये गद्य में लिखा है, वही बात लिखी है। आदि द्वंद्वों का अभाव हो करके, ये द्वंद्व मैंने जोड़ का, शत्रु मित्र, लाभ नुकसान, राग द्वेष, जीवन मृत्यु, ये बता द्वंद्व, द्वंद्व मैंने दो दो साथ में है, ये सब प्रकार के प्रतिपक्ष वाला द्वंद्व होता है ना। द्वंद्वों का अभाव होकर जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हुए हैं, द्वंद्व का अभाव कब होता है? अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिर होने से। और द्वंद्वों को रख करके कोई स्थिर होता नहीं, ये द्वंद्वों का अभाव होकर के जिसको शुद्ध चैतन्य में स्थिति हुई, स्थिरता हुई, स्थित हुए हैं भूतकाल में, स्थित होते हैं वर्तमान काल में और स्थित होंगे भविष्य में, जो जो आत्माएं, उनका अति उत्कृष्ट पराक्रम स्व आनंद आश्चर्य उत्पन्न करता है। पुरुषार्थ का पराक्रम है उसमें, ऐसे स्थिर रहना, द्वंद्व को छोड़ना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, मामूली बात नहीं है। फिर भी जिसके पुरुषार्थ से ऐसी दशा सहज सहज उत्पन्न होती है, सहज सहज टिकती है और उसमें स्थिर रह जाते हैं, उनके पुरुषार्थ को पराक्रम दे, पुरुषार्थ का पराक्रम देख करके लिखते हैं कि हमको आनंद और आश्चर्य एक साथ होता है, स्व आनंद आश्चर्य होता है, उनको आश्चर्य भी होता है इस पुरुषार्थ को देख करके, आनंद भी होता है, खुशी भी होता है। तो क्या पराक्रम करते हैं। फिर भी इसका अभिमान है नहीं कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करता हूं, इसमें क्या है, ये तो मेरा सहज स्वरूप है, ये तो मेरा सहज स्वरूप है, उसमें मैंने विशेषता क्या किया है। जैसे माँ अपने बेटे को प्यार करती है तो कोई माँ को बोले हाँ आप तो बहुत प्यार करती हो अपने बेटे को, अरे भाई वो कोई कहने की बात है, अगर माँ इसके बेटे को प्यार नहीं करेगी तो क्या करेगी। ये तो प्यार करती है, खिलाती है, पिलाती है, अरे भाई ये तो हमारा सहज बात है, ऐसा ही होता है हमारे परिणाम से, उसमें विशेष क्या बात है, कुछ नहीं, इसमें कोई विशेष नहीं, यही हमारा फर्ज है, यही हमारा धर्म है, राग द्वेष रहित होना यही तो हमारा धर्म है, उसमें हमने क्या विशेषता कर दिया है, हमारी ओर से हमको कोई विशेषता किया ऐसा लगता नहीं है। जैसे पुत्र है वो पिता का वारिसदार है, अब पिता मर गया, उसका सब वारसा पुत्र को मिला, तो कोई दूसरा बोले अरे तुमको तो वारसा मिल गया, अरे भाई इसमें क्या बात है, इसका पिता का वारसा इसका पुत्र को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा, हाँ उसमें मिल गया क्या बात है, वैसे कि वाह आपको तो वारसा मिल गया, वारसा मिल गया, अरे भाई क्या है? वो तो मिलने वाला था ही, उसमें कोई विशेष बात है ही नहीं, सहज है सामान्य है। वैसे आत्मा के लिए ऐसा होना सहज होना चाहिए, अगर सहज ऐसा नहीं रहे तो उसका मान भी चढ़े बिना रहेगा, और मान कब चढ़ता है कि जब नीचे वाले के प्रति नजर जाती है तब, इसको ऐसा नहीं होता है मेरे को होता है, ये ऐसा नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं, इसके पास वो नहीं है मेरे पास है, इसका मान चढ़ता है। तो जिसकी नजर नीचे गई उसकी गति भी नीच होगी, नीच गति में जाएगा वो, नीचे नीच नजर वाले नीच नीच गति में जाएगा, और ऊपर देखेगा वो ऊपर जाएगा कि मेरे से ये महान है, मेरे से ये महान है। ज्ञानी क्या देखते हैं कि मुनिराज मेरे से महान है, मुनिराज गणधर होते हैं तो देखते हैं कि ये जो अरिहंत भगवान है मेरे से महान है, मैं क्या हूँ इसके आगे, मेरा तो कोई मुद्दा ही नहीं है, मेरा कोई क्लास नहीं है, कितनी महानता देखते हैं भगवान की। तो ये आचार्य शिरोमणि होने पर भी गणधर देव अपनी पामरता को भी देखते हैं तो मान नहीं चढ़ता, उनको मान नहीं चढ़ता। समोसरण में भगवान ने उसको दो नंबर का पद दिया, अपने से पहली कुर्सी गंधर्व पद की लगी, लेकिन गंधर्व पद देव को मान चढ़ता नहीं, क्योंकि वो भगवान के सामने देखते हैं, वो दूसरे समोसरण में आए हुए जीव के प्रति देखते नहीं है।
इसलिए उनको दूसरा नंबर दिया।
हाँ, इसलिए दिया। सभी ज्ञानी की पॉलिसी है, सभी मुनियों की यही स्थिति होती है, दृष्टांत समर्थ देने में आता है।
हाँ,
देखो तो और जिसको जैसा होना है उसे देखे या नहीं होना है उसे देखे, किसको देखे? तुमको कैसा होना है उसको देखो ना, नीचे वाले क्यों देखते हो, तुमको ऐसा होना है क्या? तो हम लोग जैन बनिए हैं, संसार के दृष्टिकोण से हम लोग बनिए हैं, जैन हैं, तो कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि ये जो नीच कुल वाले होते हैं वो घर में बहुत गालियां आपस में देकर के लड़ते हैं, ऐसा तो हम नहीं करते हैं, ऐसी चर्चा कभी करते हैं कि हम ऐसे थोड़ी ना है, हैं? इससे तो अच्छे हैं ना, ऐसी चर्चा थोड़ी करते हैं, हैं? ये चर्चा करने का प्रसंग हो ही नहीं सकता, ये विकल्प ही नहीं आना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करते, ऐसी बात है। ऐसे ज्ञानी जो है वो अज्ञानी जैसे राग द्वेष नहीं करते, ऐसी चर्चा करते हैं, वो चर्चा वो नहीं करेंगे क्या? पांच सौ छब्बीस खेलो, जीव को उन साधनों की आराधना निज स्वरूप के प्राप्त करने के हेतु रूप की है, तथापि जीव यदि वहां भी वंचना बुद्धि से प्रवृत्ति करे तो कभी कल्याण नहीं हो सकता। वंचना बुद्धि अर्थात सत्संग सद्गुरु आदि में सच्चे आत्मभाव से जो महात्म बुद्धि होना चाहिए, होना योग्य है, वह महात्म बुद्धि नहीं और अपने आत्मा में अज्ञानता ही चली आ रही है, अज्ञानता रहती चली आ रही है, इसलिए उसकी अल्पज्ञता लघुता को विचार कर ए महात्म बुद्धि करनी चाहिए तो नहीं करना, तथा सत्संग सद्गुरु आदि के योग में नहीं करना, यह तो यह भी वंचना बुद्धि है। वहां भी यदि जीव लघुता धारण न करे तो प्रत्यक्ष रूप से जीव भव परिभ्रमण से के भय को प्राप्त नहीं होता, यह विचार करना योग्य है। सत्संग आदि योग में अगर जीव लघुता को धारण नहीं करे तो उसको भव भ्रमण का भय नहीं है, यहाँ तो उसको लघुता आनी ही चाहिए। यहाँ भी मान अपमान का प्रश्न बनाए कि मेरे को मान क्यों नहीं मिलता, इधर मेरे को निग्लेक्ट क्यों किया जाता, मेरे को गौण क्यों किया जाता, उसको भव भ्रमण का डर नहीं है। हाँ, गुरुदेव ऐसे कहते थे कि भगवान के समोसरण में 32 लाख विमान का साहिबा जो है मालिक है ना, सो धर्मेंद्र, हाँ 32 लाख विमान नो लाडो, हाँ लाडो मैंने प्रिय, पुण्य प्रकृति बहुत है ना, एक विमान में असंख्य देव, कितने करोड़ अरब नहीं, असंख्य देव, ऐसे 32 लाख विमान का जो मालिक बोला जाता है, वो भगवान के समोह शरण में जब उपदेश सुनने को जाता है, पिल्लू बनकर बैठ जाता है। कैसा? पिल्लू बनकर बैठता है, ऐसे बैठता है, वृद्ध वृद्ध एक्शन करते थे, ऐसे बैठते पिल्लू बन करके, उतना विनम्र होकर के भगवान का उपदेश सुनता है। वो आता है ना सुनने को, तो इतने देव इनके साथ आते हैं, अकेला तो आता नहीं ना, बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी अकेला होता नहीं कभी, तो इतने देव इनके साथ होते हैं कि आकाश में से गुजरे ना तो नीचे अंधेरा हो जाए। कभी लोगों को आश्चर्य हो जाए कि अरे बादल तो है नहीं, अंधेरा क्यों हो गया, इतनी संख्या में ऊपर से देव नीचे उतरे मनुष्य लोग में, बीच में तो ज्योतिष के विमान सूर्य चंद्र है, उतने देव के साथ वो आता है। तो वो नहीं देखता कि ये मेरे देव हैं, इसका मैं ये हूँ, राजा हूँ, और मैं पिल्लू बन के कैसे बैठूं, नहीं, भगवान के पास इस तरह से बैठता है। करोड़पति वरोड़पति वगैरह उनको फटकारते थे इस तरह से, क्या यहाँ हमारे यहाँ कोई पैसे वाला है तो इसको थोड़ा मक्खनबाजी लगाएं, ये बात है, क्योंकि वो चंदा बंदा करते नहीं है, अपेक्षा वाले को तो मक्खन लगाना पड़ता है।
लघुता नम्रता तो घनु है,
और पुण्य से, पद से, अधिकार से, लक्ष्मी से, सत्ता से, व्यक्तित्व से महान होने पर भी यदि वो लघुता को धारण करता है तो वही इसकी महानता है, यही इसकी महानता है, और अहम भाव रखता है तो यही इसकी नीचता है। अब पसंद कर लो क्या करना चाहिए। अपने एक बहुत बड़ा दृष्टांत हो गया लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री बहुत प्रामाणिक थे, शुरू से गांधी जी के शिष्य थे, गांधीयन पॉलिसी में ठोस मानते थे। तो पहले जब वो जवाहरलाल के मिनिस्ट्री में रेलवे मिनिस्टर बने और रेलवे का एक अकस्मात हुआ, खुद ही रिजाइन हो गया, किसी की भूल से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि मिनिस्टर ऑफ रेलवे, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोड़ दिया। वो बाद में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बहुत अल्प समय रहे, वो साल डेढ़ साल कुछ रहे थे, फिर वो गुजर गए, ताशकंद में मर गए ना, डेढ़ साल हो गए, डेढ़ साल करीब, फिर वो मर गए। तो इसके परिवार के पास या इसके बैंक बैलेंस में कुछ था ही नहीं, घर में खटिया था और कुछ घर में भी नहीं था, हिंदुस्तान का राजा था वो, और दरिद्र थे, हिंदुस्तान का राजा होवे और दरिद्र होवे, ये इनकी शोभा है या इनकी अशोभा है, क्या है ये, इसका गौरव है, इसका गौरव है तो इसमें क्या। ऐसे बड़े लोग विनम्र हुए, यही तो हमारे मार्ग में गुण है। ये गुण का मार्ग है, सारा हमारा मार्ग गुण दोष पर आधारित है। दोष कितना करते हो या निकालते हो, गुण कितना ग्रहण करते हो, उसी पर उसका वैल्यूएशन है। बाकी दूसरी कोई गिनती का विषय इस मार्ग में है नहीं। जैन दर्शन है वो एक दूसरे दृष्टिकोण से देखे, निर्दोषता के दृष्टिकोण से देखे, तो ये एक निर्दोषता का परिपूर्ण उपाय उसको कहते हैं जैन दर्शन। ए कंप्लीट लाइन ऑफ कंप्लीट इनोसेंसी, पूरा इनोसेंट होना है, उसकी पूरी लाइन पकड़नी है, तो आ जाओ तुम जैन दर्शन जैन मार्ग में। वहाँ वो तरीका है, वहाँ वो चैनल है, वहाँ वो उपाय है, बाकी कहीं और जगह नहीं दिखता। ये 526 में वो बात लिया है कि सत्संग में आने वाला अगर लघुता को धारण नहीं करता है, हाँ तो क्या चलता है, एक दूसरे पे हावी होने का बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्या। हाँ वो अपने आप को ठीकता है, वंचना बुद्धि मैंने क्या है कि अपने आप को वो ठीकता है, अपने से वो ठिकाया जाता है, उसको भान नहीं होती कि मैं मेरे को कैसे ठीकता हूँ, वो बात लिया है। आखिरी पंक्ति रह गई ने, जीव को यदि यह बात प्रथम लक्ष्य अधिक लक्ष्य में अधिक तौर से आए तो सब शास्त्रार्थ उसको प्राप्त हो गया, सब शास्त्र का अर्थ मिल गया। जाओ शास्त्र पढ़ने की उसको कोई बंधन नहीं है, सब शास्त्रार्थ और आत्मार्थ का, आत्मार्थ का सहजता से सिद्ध मैंने प्राप्त होना संभव है, यही विज्ञापन है हमारी, यही विज्ञापन है, यही विनती है। इतना करो भाई, इतना कम से कम इतना करो, सत्संग में आना हो तो उतना करो। डोबू डोबू गुजराती में भैंसा को डोबू कहते हैं, और गाय भैंस और जो बकरे आदि जो प्राणी हैं इसमें मोटी बुद्धि भैंसा को होती है, भैंसा को बुद्धि नहीं होती है, मैंने विचार शक्ति, बुद्धि माने विचार शक्ति नहीं होती है, तो उसको बोला जाता है डोबू। और मनुष्य में भी जो कम अक्कल वाला होता है उसको हमारे गुजराती में बोलते हैं कि डोबो से डोबो, डोबो मैंने भैंसा जैसा अक्कल है, उसका कोई विचार शक्ति नहीं है, तो अपनी विनम्रता के लिए वो बोलती है कि मैं तो डोबू हूँ, डोबू मेरे को क्या समझ है, मुझे कुछ नहीं आता है ऐसा। हाँ वो भी वो तो उसमें तो व्यू पॉइंट वो है कि धार्मिक प्रसंग होता है, जैसे भगवान की प्रतिष्ठा आदि का, वहाँ छोटा काम भी बड़ा बड़े लोग को करने का हो जाता है, बड़े लोग भी छोटा छोटा काम कर लेते हैं। श्री कृष्ण के दृष्टांत से बात हुई थी, पांडवों ने जब अश्वमेध यज्ञ किया महाभारत का युद्ध का विजय करने के बाद, तो सब लोग खाना खा लेते थे, बाद में श्री कृष्ण इसकी सफाई जो है સાવણીને શું કે છે
ઝાડુ
ઝાડુ ઉઠા કરકે વો ખુદી સફાઈ કરને લગ જાતે થે જો જૂઠા પડા રહેતા હૈ ને ઉસકો સાફ કરને કે લિયે હમારે યહાં જો નોકર લોગ સાફ કરતે હૈ વો શ્રી કૃષ્ણ ખુદ કરને લગ જાતે થે ઝાડુ ઉઠા કરકે જૂઠન કો સાફ કરતે થે ઇસકા મતલબ ક્યા હુઆ કે તીન ખંડ કે ધણી થે ઇસ જમાને કે યુગ પુરુષ થે બડે મહાત્મા થે ઓર અન્ય લોગ મેં તો ભગવાન માનતે હૈ ઇતની જિસકી ઇમ્પ્રેશન થી કે લોગ ભગવાન માનને લગે વો ખુદ હી ઝાડુ લગાએ ઇતની વિનમ્રતા થી ઇતને ગુણવાન થે વો ઇતને ગુણવાન થે ઓર ધર્મ કાર્ય મેં કભી ઊંચ નીચ બને કા વિકલ્પ નહીં રખતે થે વો વાત વહાં સે લેતે હૈ સુદામા બહુ દરિદ્ર થે દ્વારકામાં આવે તો ઉનકે તો સબ સોને કે મહેલ સોને કી દ્વારકા બોલી જાતી સોને કી 16,108 સોને કે મહેલ ઓર 16,108 સોને કે જિનાલય જિન મંદિર એક એક મહેલ કે પાસે એક એક જિન મંદિર સબ સોને કે સારે દ્વારકા સોના સોના મને લગે ઇસકે બનાઈ હુઈ થી ને દેવો કે દેવ લોગ બનાતે હૈ ઓર યે ફટે ટૂટે કપડે પહેન કરકે આયે હૈ અપની ગદી પે અપને પાસ બિઠાયા ઉનકો વો ભી છોટે મોટે કી કલ્પના નહીં કરતે થે ઉનકો ભી વિશ્વાસ થા હમ લોગ સાથ મેં પઢાઈ કરતે થે સાથ મેં પઢતે થે એક હી આશ્રમ મેં સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં એ પઢતા થા સાંદીપની ઋષિ કરકે એમકે ગુરુ થે તો સભી બચ્ચે લોગ વહાં પઢતે થે વો ભી સાથ મેં પઢતે થે ઓર ઉસ વક્ત હમ ઘનિષ્ઠ મિત્ર થે ઓર ઋષિ કી સેવા ભી સાથ મેં કરતે થે ગુરુ કી સેવા ભી એસા નહીં હૈ કે રાજકુમાર હૈ ઇસલિયે સેવા નહીં કરે વો બાત નહીં હૈ યે દરિદ્રી બ્રાહ્મણ કા લડકા હૈ વો સેવા કરે ઓર રાજકુમાર હૈ વો સેવા નહીં કરે એસી બાત નહીં દોનો સાથ મેં સેવા કરે ઓર ગુરુ કે ઘર મેં તો જો રસોઈ વગેરે પકાને કા તો લકડી વગેરે જલાને કા હોતે ચૂલા મેં લકડી ડાલતે થે વો લકડી જંગલ મેં સે લે આતે થે તો સાથ મેં લકડી લેને કે લિયે ભી સાથ મેં જાતે થે ઓર લકડી ઉઠાતે થે ભી સાથ મેં ઉઠાતે થે વો સબ કામ વો કરતે થે તો ઇક્વલ સ્ટેન્ડ પર રહેતે થે વહાં તો જબ મિલને કો આયે જબ વો રાજા બડે હો ગયે તીન ખંડ કે ધણે તો ઉસકો અપની ગદી પે અપને સાથ બિઠાયા ઇક્વલ સ્ટેન્ડ પર બિઠાયા દરિદ્ર હો તો ક્યા હો ગયા મેરે મિત્ર હૈ તો છદ્મસ્ત અવસ્થા હૈ ને છદ્મસ્ત અવસ્થા હૈ ઇસલિયે તો 833 મેં વો ચલતા હૈ કે જબ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ મેં સ્થિત હો ગયે તો ફિર કુછ કરના કરને ધરને કા નહીં રહા અબ આગે કહેતે હૈ દેહ સે જૈસા વસ્ત્ર કા સંબંધ હૈ વૈસા આત્મા સે દેહ કા સંબંધ કહેતા દેહ કે નાપ કા વસ્ત્ર બના હમ પહેનતે એસી બાત નહીં પહેલે તો દર્દી સે ફિટિંગ બિટિંગ બરાબર જિસકા જિતના માપ હો ઉતના હી વસ્ત્ર બનાએ કોઈ ઓવર સાઇઝ કા પહેનતે હૈ ફેશન સે વો બાત નહીં હૈ અપને અપને નાપ કા બનતા तो जिसका जितना माप है लेकिन वस्त्र भिन्न देह भिन्न, वैसा ही आत्मा को देह का संबंध जिन्होंने यथा तथ्य देखा है कि जैसा वस्त्र शरीर से भिन्न है वैसे मेरे आत्मा से ये देह वस्त्र जैसा भिन्न संबंध रखता है, ऐसा मैं देखता हूँ। म्यान से तलवार का जैसा संबंध है वैसा देह से आत्मा का संबंध जिन्होंने देखा है वो भी ऐसा ही है, तलवार जैसा ही म्यान आकार का म्यान का आकार है लेकिन तलवार भिन्न म्यान भिन्न है। अभेद स्पष्ट आत्मा का जिन्होंने अनुभव किया है कर्म से और राग से नहीं बंधा हुआ और नहीं स्पर्शित हुआ हुआ, ऐसा अनुभव जिसने किया है भिन्न आत्मा का, उन महत्पुरुषों का, उन महत्पुरुषों को जीवन और मरण दोनों समान है। जिसको जीवन मरण समान है उनको दूसरे प्रसंग में तो कोई हीना दिखता दिखता लगती नहीं है, कोई न्यूना दिखता लगती नहीं है, कोई राग द्वेष का कारण रहता जो मृत्यु से डरता नहीं वो किससे डरेगा, और जिसमें मृत्यु से कोई फर्क नहीं दिखता उसको किस संयोग वियोग से फर्क दिखेगा, ये सुख दुख तो कल्पना होगी इसके लिए। मैं उतना का उतना यूं का यूं रहता हूं, जीवन मरण से या संयोग वियोग से मेरे में कुछ मेरा फर्क होता नहीं है। जिस अचिंत द्रव्य की शुद्ध चीति स्वरूप कांति परम प्रकट होकर अचिंत्य करती है, वह अचिंत्य द्रव्य सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है, ऐसा निश्चय जिस परम कृपालु सत्पुरुष ने प्रकाशित किया उसका अपार उपकार है। देखो ऐसा निश्चय कृपालु देव ने प्रकाशित किया, कृपालु देव सत्पुरुष के लिए बोलता है। हाँ, ये वचनामृत बहुत अलौकिक ढंग से बहुत सुंदर सहज निकल गया है। मैंने कभी कभी कोई वचन निकलते हैं कोई ऐसे ही युगानुयोग में निकल जाते हैं, ऐसे सब नहीं निकलते हैं, ऐसे कोई असाधारण निकल जाते हैं, उसकी रचना भी अचिंत्य है। तो बात तो जबरदस्त कर दी लेकिन चढ़ाई कोई सत्पुरुष के खाते पे, चढ़ा दी कोई सत्पुरुष के नाम पे, ऐसा कर दिया ना खुद ने लिखा है। और कोई अपूर्व भाव से अपूर्व वचनामृत को प्रकाशित किया है लेकिन चढ़ाया है किसी सत्पुरुष के नाम पे, कि मान का अभाव होता है तो ऐसा होता है, कोई अच्छी बात निकलते हैं तो ऐसा कौन कहते हैं कोई महापुरुष है कोई सत्पुरुष है, ऐसा निश्चय करते हैं। हम तो इसका उपकार मानने वाले हैं, हम तो इसका, बात निकली है अपनी आत्मा से, शैली है, विनम्र होने की शैली भी बहुत जबरदस्त है। क्या कहते हैं आचार्यों भी ऐसे करते हैं, तीर्थंकर के नाम पे चढ़ाते हैं, गुरु के नाम पे चढ़ाते हैं, ऐसे भी है। जीस अचिंत्य द्रव, अपना स्वरूप, द्रव माने अपना स्वरूप कैसा है, अचिंत्य, अचिंत्य मैंने चिंतमन से पार जाते हैं तब अनुभव होता है। चिंतमन में उसका चिंतमन करते हैं तब तक तो इसका अनुभव होता नहीं, क्योंकि चिंतमन में उसका समाविष्ट होना असंभव है। स्वरूप अनुभव करने के लिए स्वरूप चिंतमन छोटा पड़ता है, जबकि होता है आखिर तक स्वरूप चिंतमन है। दूसरा तो कोई अनुभव के पहले कोई दूसरा परिणाम तो हो ही नहीं सकता, स्वरूपानुभव के पहले पहले स्वरूप चिंतमन होता है, लेकिन वो भी छोटा पड़ता है, उसमें भी स्वरूप का समावेश नहीं होता। सब चिंतमन छोड़ के परिणाम चिंतमन की सीमा का उल्लंघन करके आगे बढ़ता है तब स्वानुभव होता है निर्विकल्प दशा में। ऐसा कोई द्रव्य ही अचिंत्य है, द्रव्य स्वभाव अपना स्वरूप अचिंत्य पदार्थ है। उसकी शोभा कांति माने उसका तेज, कांति माने तेज, जिस तेज से आत्मा शोभायमान होती है उसको कहते हैं कांति। वो कैसी है, शुद्ध चीती स्वरूप कांति है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप की शुद्ध चैतन्य रूप परिणति उसको शुद्ध चीती कहने में आती है। चीती इसलिए कही कि वो चैतन्य की परिणति को चीति कहते हैं, यानी जो परिणाम से स्वरूप को चेतने की, जिस परिणाम द्वारा स्वरूप चेता जाता है, स्वरूप चेतना प्रकट होती है, उस क्रिया को कहते हैं शुद्ध स्वरूप की चीति, क्रिया को चीति कहते हैं। इस क्रिया को तो कहते हैं कि शुद्ध चीति स्वरूप कांति परम प्रकट होकर के, एकदम प्रकट होकर के अचिंत्य करती है। वो दशा भी अचिंत्य है, स्वरूप तो अचिंत्य है, लेकिन स्वरूपाकार जो शुद्ध चीति स्वरूप तेज प्रकट हुआ वो भी अचिंत्य है।
शुद्ध चीति स्वरूप है वो चीति शक्ति से कनेक्ट है।
हाँ, चीति शक्ति की दशा लो, लेकिन यहाँ पूरा द्रव्य की दशा लेना है, पूरा आत्मा की दशा लेना है। ऐसे तो एक के गुण की शुद्ध दशा अचिंत्य है, आत्मा में आनंद कैसा है अचिंत्य, आत्मा में शांति कैसी है अचिंत्य शांति है, आत्मा में सुख कैसा है अचिंत्य सुख है। एक एक गुण की दशा अचिंत्य है तो पूरा अनंत गुणों की दशा अचिंत्य ही अचिंत्य अचिंत्य है। वो अचिंत्य करती है प्रकट होकर के, ऐसी दशा अचिंत्य करती है, वह ऐसा अचिंत्य द्रव्य दूसरा कोई नहीं है, अपना ही सहज स्वरूप है। वह सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है, ऐसा निश्चय, ये निर्धार, ये निश्चय, इसमें कोई हेरफेर नहीं है, ऐसा निश्चय जिस परम कृपालु सत्पुरुष ने प्रकाशित किया, उसका अपार अपार उपकार है। इसका उपकार का अपार हमको दिखता नहीं है, वो उसका इतना करने से इसका उपकार क्या कुछ करते हैं वो बात रहती नहीं है। इसका उपकार को नापा नहीं जाता, उसको कहते हैं कि इसका अपार उपकार है। ये वचनामृत सत्पुरुष के प्रति उपकार बुद्धि प्रदर्शित करने के लिए निकला है, और ऐसे उपकार बुद्धि वाले वचनामृत बलुदेव जो प्रकाशित करते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकले हैं। वो छपत के पत्र में चार निकाल निकाले, ये भी जबरदस्त है, ये भी एक जबरदस्त है। कहाँ से निकलता है भगवान जाने, लेकिन निकलता है बहुत जबरदस्त। यहाँ तक रखें।